Good morning. आज की मुरली है आत्मअभिमानी, बाबा ने सारी मुरली में बार बार यही पाठ पक्का कराया है कि तुम्हें आत्मिक स्मृति में रहना है, आत्मअभिमानी बनना है, सेवा के लिए भी बाबा ने बताया कि जब तक अल्फ पक्का नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ो। कुछ बाबा ने आत्म अभिमानी बनने के व आत्म चिंतन करने के टिप्स भी बताए हैं। भक्ति मार्ग की बातें बताकर भी बाबा यही स्मृति पक्की कराई कि तुम्हें तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने अपने अनुभव भी बताए साकार बाबा ने कि मैं कैसे आत्मस्मृति का अभ्यास करता हूं। साथ में चार्ट रखने का भी बोला, बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं इसके कारण भी बताए, और जहां चार्ट की बात आती है वहां माया कैसे भूल सकती है, तो बाबा ने माया को भी याद किया। तो आज शुरू से ही बाबा ने कहा, क्लास में सभी भाई बहनों को बोलो आत्म अभिमानी होकर बैठे, तो हम सब भी आज आत्म अभिमानी होकर के बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा के जो भी विधि बताई है उसको फॉलो करेंगे। आज है 25/11/2025। मीठे बच्चे, आत्मा को सतोप्रधान बनाने का फुरना माना फिकर रखो। कोई भी खामी अर्थात अंदर हमारी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे, ये तीन बातों में सारी मुरली का सार है। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? ऐसे तो ब्राह्मण सदा शुभ ही बोलते हैं, लेकिन बाबा ने बताया सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे फिर बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जब यहां जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठो और बाप को याद करो। यह स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है। क्या स्मृति मिल रही है? हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि ये है ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है। जब से हम ज्ञान में आए, कोर्स किया, पहला लेसन हमें यही दिया गया, तुम आत्मा हो। और आज भी हम यही पढ़ते हैं कि हम आत्मिक स्मृति में रहे। जैसे कोई टफ सब्जेक्ट होता है तो टीचर उसको बार बार रिवाइज करता है, उसको सरल करके अलग अलग विधि बताता है याद करने की। ऐसे बाबा भी हमारा सुप्रीम टीचर है। तो आज भी हमको ये पाठ पढ़ने के लिए बहुत सरल शब्दों में अलग अलग विधि बता रहे हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है। बाबा भी बता रहे हैं ये सब्जेक्ट है, कंपल्सरी है, जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को ये कहने आएगा ही नहीं, वो आत्मा को जानते ही नहीं है। हम खुद आत्मा है यही पता नहीं है तो कैसे बताएंगे। बल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है। तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके। हमारा ज्ञान सुनकर के कई लोग यही बातें बताते हैं। तो बाबा कहते भले शब्द बताएंगे, रिपीट करेंगे, लेकिन अंदर वो स्मृति रहे वो नहीं हो सकता। समझाने का अकल नहीं आएगा। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, क्योंकि देख ही रहे हैं आज की दुनिया को तो हर कोई समझता है ये दुनिया अभी पुरानी हो गई है। नई दुनिया और पुराने दुनिया में बहुत फर्क है। वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्षर है मां में कम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। कब नहीं थे? जब हम अपने घर में थे, परम धाम में थे, तो ये देह के संबंध नहीं थे। तुम आत्मा यहां आती हो पार्ट बजाने। गायन भी है, ये दुनिया वाले भी कहते हैं अकेले आए अकेले जाना है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, वो अकेले आए अकेले जाना शब्द तो बोल देते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। ये याद हमारी यात्रा भी है तो हमारा बल भी है। यह है ही राजयोग का बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, वहां हठ योग की दरकार नहीं, वहां बीमारी नहीं है तो फिर ये सब ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो कितने प्रकार के बीमारियां हैं तो फिर ये हठ योग भी करना जरूरी समझते हैं कि हम फिट रहे। ये सब यहां इस छीछी दुनिया में करते हैं, ये एक्सरसाइज हठ योग आदि बाबा कहते हैं इस दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको भी पता नहीं है। वहां हरेक चीज नई है, गीत भी है ना, आज मुरली के आरंभ में गीत नहीं बजा है लेकिन बाबा ने बीच में ही गीत को याद किया है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। सभी ने यह गीत सुना होगा, पहले तो सुबह सुबह यही गीत बजता था अमृत वेले। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, दुनिया वाले भी नहीं कहेंगे, अज्ञानी हैं वो भी नहीं कहेंगे कि अभी सतयुग है, अभी है कलयुग। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे। दुनिया सारी में बहुत एजुकेशन देते हैं, बहुत टीचर हैं, लेक्चरर हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर भी हैं, लेकिन बाबा कहे ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। इतना बड़ा एम ऑब्जेक्ट कौन दे सकता है, कितना भी बड़ा पोस्ट हो, पोजीशन हो, और भी डिग्रियां हो, लेकिन ये डिग्री कोई नहीं बता सकता। बाप के सिवाय और कोई बोल न सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, घर की भी स्मृति दिलाई जाती है, अपनी राजधानी की भी स्मृति दिलाई जाती है। गफलत नहीं करनी है, बाबा सबको समझाते रहते हैं। क्या समझाते हैं, कहां भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है, बाबा भी समझते हैं, कोई जॉब करता है या बिजनेस करता है उस समय पूरा समय तो वो आत्मस्मृति में रह नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। मना लक्ष्य होना चाहिए कि बीच बीच में मुझे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, स्मृति में रहना है, और कोई उपाय नहीं पवित्र बनने का या नई दुनिया में जाने का या उच्च पद पाने का, और कोई उपाय नहीं, एक ही विधि है। तुम राजयोग सीख रहे हो, किस लिए सीख रहे हो? नई दुनिया के लिए। पवित्र बनते तो हैं, और भी प्राप्तियां होती है, लेकिन हमारा एम ऑब्जेक्ट है नई दुनिया का। वहां आयरन एज आत्मा जा न सके, माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा के जो ज्ञान और योग के पंख हैं, वो माया ने तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब बाबा विधि बता रहे हैं आत्मस्मृति का, ये भी एक विधि है, ये भी एक टिप्स है। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। जैसे एक छोटी चिप है, उसमें सोचते हैं ना, देखो कितनी छोटी चिप है, उसमें हजारों गाने भरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा ऐसा मंथन करो कि आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। 84 जन्म भी छोड़ो, एक जन्म का भी सोचो तो 40, 50, 60, 70 साल का रिकॉर्ड भरा है। सारे दिन का भी सोचें तो हम क्या क्या सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, वो सब हमारे में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। तो ये स्मृति भी अगर हम रखें या इसके बारे में भी सोचें, तो बाबा कहते हैं आत्मस्मृति पक्की हो जाएगी, वंडर लगेगा और उमंग आ जाएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, बुद्धि किस में है? कोर्स में बोलते हैं ना, आत्मा तीन अंगों के साथ कर्म करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। देखो आज सारी मुरली में बाबा ने आत्मा 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 शब्द कितनी बार बोला है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उसको परम कहते हैं। वो ज्ञान का सागर है, बहुत छोटी बिंदी है। ये भी किसको पता नहीं है, जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अब बाबा बिंदी है तो हमको भी बिंदी बनाया जाता है। जैसा बाबा है वो गुण भी हमारे में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बनते हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि हम कहां फेल ना हो जाए। वो स्टूडेंट्स को भी रहता है कि मुझे गैलप करना है, मुझे पढ़ना है, नहीं तो मैं फेल ना हो जाऊं। तो बाबा कहते हैं तुमको भी ये फुरना रखना है कि हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही ये है। कौन सी सब्जेक्ट है? हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ खामी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। बाबा को भी पता है कि बच्चे स्टडी तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन माया भुलाती है। आत्मा चाहती है चार्ट रखें, बाबा भी जानता है बच्चे चाहते हैं चार्ट रखे, लेकिन क्यों नहीं रख पाते ये भी बाबा को पता है कि बच्चे क्यों नहीं चार्ट रखे। आत्मा चाहती भी है कि चार्ट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम न करे, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। बाबा का डायरेक्शन फॉलो करना तो चाहते हैं, लेकिन माया के चंबे में आ जाते हैं। दिल कहती भी है पोता मिल रखें, चार्ट रखें। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मिल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मिल है, वो लोग तो चलो लॉस हो भी जाएगा तो दूसरे दिन या दूसरे महीने या दूसरे साल में कवर भी कर लेंगे, लेकिन हमारा पोता मिल बड़ा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मिल है, 21 जन्मों की कमाई है। अगर अभी हमारा लॉस गया तो 21 जन्मों में लॉस जाएगा, इसको हम फिर दूसरे जन्म में कवर नहीं कर पाएंगे। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए, बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में भी हैं, तो स्वर्ग में भी राजाई पद में रहते हैं। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बाबा अपना अनुभव बताते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। क्या वंडर खाते हैं बाबा? बाबा अभी अपना अनुभव बता रहे हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट ये है। ये बाबा नहीं भी भूलते होंगे, लेकिन बच्चों को थोड़ा हौसला दिलाने के लिए ये बताते हैं कि मैं भी भूलता हूँ फिर याद करता हूँ, तो आप भी थोड़ा भूले तो मायूस नहीं हो जाओ, फिर पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते ये बड़ी सब्जेक्ट है, इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता, माना कोई दो राय नहीं, हाई मेन सब्जेक्ट। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। तो सब धर्म छोड़ दें, सब संबंधी भी छोड़ दें, तो बाकी क्या रह गया? बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेपछेप नहीं लगता। जो कुछ लेपछेप है शरीर का है, उसको गंगा में ना किया हो तो भी साफ हो जाएगा, और शरीर जब छूटेगा, शरीर जल जाएगा, तो सारे पाप उसके साथ चले जाएंगे। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, वो जैसे खुद होंगे ऐसी शिक्षा देंगे। सतोगुणी बना न सके, भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हरेक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है। बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर इस पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी, इसी को ही बाबा परिवर्तन करते हैं, इसी को ही नया बनाते हैं। नई दुनिया के चिन्ह निशानी क्या है? बाबा कहते हैं नई दुनिया के चिन्ह है ये लक्ष्मी नारायण। ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि 1250 साल बीत गए तो पुरानी हो गई ना थोड़ी, उसको भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। कोई MBA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, उस समय MBA BCOM ही बहुत कुछ होता था, अभी तो बहुत सी डिग्रियां निकली है। तो इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो, दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, जो भी देवी देवताएं हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सबकी जीवन कहानी को हम जानते हैं। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है तो क्या है? भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं, लेकिन वो मनुष्यों को इजी लगता है ना। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है भक्ति जो है, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है, पूरा जाड़ खड़ा हो जाता है। भक्ति का ये जाड़ है, अथाह कर्म कांड है। द्वापर युग से एक छोटे रूप में भक्ति शुरू हुई, अभी कलयुग आते आते कितना विस्तार हो गया है। ज्ञान का गुटका एक ही है, गुटका माने सार, एसेंस। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भाव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहती भी हो हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब पावन सुखी हैं। रावण राज्य राम राज्य का नाम तो है ना, राम राज्य का किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। ऐसी नई दुनिया आती है उसमें हम ही जा सकते हैं या हम ही राज्य कर सकते हैं, ऐसा किसी को भी आइडिया नहीं है। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बल करके कहते हैं भगवानो वाच्य मन मना भव, कहते भी है गीता में भी है मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए? मन मना भव बोल देंगे, अक्षर बोल देंगे, मध्याजी भव भी कहेंगे, लेकिन कैसे हमने 84 जन्म लिए ये साइकिल का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। अब चक्र पूरा होता है, गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो गीता पर क्या बोलते हैं। शुरू में बाबा विधि बताते थे, गीता कोई सुना रहा है वहां जाकर सुनो, फिर उसका अर्थ बताओ, उनको समझाओ। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, वो दादियां सुनाती है ना कि जब पार्टी लेके आते थे बाबा के सामने, तो रास्ते में पक्का करा के आते थे कि बाबा पूछेंगे, आगे कभी मिले हो तो बताना कि हाँ हम 5000 साल पहले मिले थे। तो बाबा ने फिर उसमें भी पकड़ा है, बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे कि हाँ हम पहले मिले हैं। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो रटा हुआ होगा तो चुप हो जाएंगे क्योंकि ये तो सिखाया नहीं। तो तुम फिर बाबा कहते हैं कि क्या आंसर देना है, वो भी बाबा सिखाते हैं। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। वह तुम कहते हो नरसे नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना उसमें राजा रानी डीटी डिनेस्टी सब है। विश्व का राज्य मिला माना उसमें राजा रानी भी आ गए, प्रजा भी आ गई, सब कुछ आ गया। उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे, प्रजा भी कहेगी हम विश्व का मालिक है, क्योंकि वो भी सुखी है, बंधन मुक्त है। इसको कहा जाता है शुभ बोलना, बाबा सिखा रहे हैं शुभ बोलना कैसे है। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे, जब बच्चे कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कम नहीं, तो बाबा क्या बोलेंगे? बाबा कहते हैं हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोतामेल भी देखना है। क्या देखना है पोतामेल? कि इस हालत में हम उच्च पद पा सकेंगे वा नहीं, अभी जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसमें हम उच्च पद पा सकेंगे वा नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितनों की अंधों की लाठी बना हो, अगर सर्विस नहीं करते तो क्या समझना है? अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं, अब बाबा बता रहे हैं कि बच्चे चार्ट क्यों नहीं रखते हैं, बाबा ये भी जानते हैं। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते तो फिर पोता में रखकर क्या करेंगे? फिर बाबा कहते 8 घंटा याद में रहो, इतना घंटा पुरुषार्थ करो, हम तो करते नहीं तो चार्ट रख के क्या करेंगे? उसको क्या कहा जाता है जो चार्ट नहीं रखते वह ऐसा सोचते हैं, तो क्या कहा जाता है उसको? फिर हार्ट फेल कहा जाता है, माना दिल शिकस्त कहा जाता है। वो पढ़ते भी ऐसा ही है, जो दिल शिकस्त होंगे, हार्ट फेल होंगे या छोटी दिल होंगे, वो फिर पढ़ते भी ऐसा ही है, ध्यान नहीं देते। मियां मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है कि हम तो फिर भी देखो रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, हम तो ठीक ही चल रहे हैं। तो बाबा कहते मियां मिट्ठू बन बैठ नहीं जाना है जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है, हमको पढ़कर ये बनना है, बाबा के सामने लक्ष्मी नारायण का फोटो रहता था ना, तो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट ये सामने है, ऐसा बनना है। ये भी वंडर है ना, कलयुग में तो राजा ही नहीं है, सतयुग में फिर इनों की राजाई कहां से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीतकर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती, जब दोनों अलग अलग युग में हैं, तो कैसे लड़ाई लगेगी? तो ऐसा नहीं है कि देवताओं ने जीत के राज्य लिया है, लेकिन पढ़ाई से राज्य लिया है। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, ये सारी बातें बाबा बता के फिर ये पाठ पक्का करा रहे हैं। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है, पवित्र आत्माएं ही वापस जा सकेंगी। तमो प्रधान आत्माएं तो जा न सके, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया है। तमो प्रधान होने कारण, अब देखो बाबा ने नया शब्द परम धाम को दिया है, तमो प्रधान होने कारण इतना दूर होली माना पवित्र जगह जा नहीं सकते। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असुर परम धाम के रहने वाले हैं। यहां ये पांच तत्वों का पुतला लिया है पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कौन हुआ? वहां शरीर गया या आत्मा गई? कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो कौन स्वर्ग में गया, शरीर गया या आत्मा गई? शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा। वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती क्योंकि अभी स्वर्ग है ही नहीं, तो कहां से जाएगी? मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया वो कहते रहते हैं, भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई है, ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, वो लोग भी मानते हैं निराकार की पूजा सबसे ऊंच पूजा है, ऊंचते ऊंच शिव है, उसको ही याद करो सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते हैं माला फेरते रहो, कहते हैं ना माला फेरते हैं, कोई राम राम बोलते हैं कोई शिव शिव बोलते रहते हैं। बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहते, वो अंदर किसको याद करते हैं वो भी पता नहीं, शिव कौन है वो भी पता नहीं, बस माला फेरते रहते हैं और गुरु ने बताया वो शिव शिव बोलते रहते। आजकल तो एक जाप काउंटर निकला है, उससे काउंटिंग होती रहती है कि कितना बार हमने बोला। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते रहते हैं, यहां तो एक ही बात है, वहां अलग अलग बातें गुरु बताते, यहां तो एक ही बात है। बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, शिव शिव मुख से कहना नहीं है। अब बाबा ये भी समझाते कि वो लोग बोलते रहते हैं तो उनको बताना है बाप का नाम, बच्चा थोड़े सिमरन करता रहता है। ये है सब गुप्त, किसको भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। कईयों को ये भी पता नहीं कि आप लोग इतना सुबह सुबह उठकर क्या करते हो, क्या सुनते हो, कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते, वृद्धि को पाते रहते, आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है वो देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं ना कि बाबा ने जो जो बोला अब सब साकार हो रहा है। बच्चे वृद्धि को पाएंगे, क्या क्या होगा सब दिखाई पड़ रहा है। सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। बाबा कहते हैं अगर मैं पहले से साक्षात्कार करा दूं कि अभी ये होगा तो फिर अचानक की बात ना रहे, आर्टिफिशियल हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में सब बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नोंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है। तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करते रहना है। नंबर वन बात है, फिर बात आई, नंबर वन बात कौन सी है, अलग पक्का करो तब आगे चलो। नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे दूसरी बातें। आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो काफी बातें समझ में आ जाएगी। बच्चियां लिखती है, फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है। किसी को समझ में आ गया होगा तो फिर लेटर आया होगा बाबा के पास। भल ऐसे कहते हैं, बाबा ने उसको उत्तर दिया, भल ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो उसका प्रूफ क्या। अगर उसने समझ लिया गीता का भगवान शिव है और वही आया हुआ है और वही अभी पढ़ा रहा है, अगर ये उसका निश्चय हो गया तो उसका प्रूफ क्या हम बोलते बाबा। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से हम जाकर मिले, वर्षा देवे, एक को भी निश्चय नहीं बैठता। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती है कि बाबा मुझे निश्चय बैठ गया है, आप आए हुए हो मैं आऊं। बाबा कहते ऐसी चिट्ठी एक की भी नहीं आती। भर करके लिखते भी हैं कि नॉलेज बड़ी अच्छी है परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे, क्या समझे, इतनी हिम्मत नहीं आती कि जो समझे। वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वो बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए। आगे चल निकलेंगे, बाबा भी कहते हैं आगे ऐसे भी बच्चे निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंचते ऊंच भगवान है तो उसका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए, उसकी बुद्धि एकदम खुल जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियां मिट्ठू नहीं बनना है, याद का बल जमा करना है। आज का वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जहां नाम और मान का त्याग हो जाता है तो सबका प्यार तो है ही है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो। बाबा कच्चा फल किसको कहते हैं? अभी मैंने कुछ किया और अभी मेरी तारीफ हो जाए, अभी मैंने कुछ किया और अभी फल मिल जाए, वो है कच्चा फल। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन है, परमात्म बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीनो। कौन से तख्त पर? आत्मिक स्मृति के तख्त पर, अकाल तख्त पर। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो भल बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है, यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।